श्री अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने। गुरु वचन कड़वे लगे ये विचारो आप, कड़वी औषधि बिन पिए मिटे नतन का ताप। हरे कृष्णा। गुरु के वचन संसार में प्राय शिष्यों को थोड़े कड़वे लगते हैं, क्योंकि गुरु भले की बात करते हैं लेकिन हमारा मन संसार में अटका हुआ है, इसलिए हमको अच्छे नहीं लगते। गुरु भगवत धाम ले जाना चाहते हैं, हम संसार में यही रहना चाहते हैं, भोग भोगना चाहते हैं, इसलिए गुरु की राय से हम सम्मत नहीं होते। इसलिए गुरु वचन प्राय शिष्यों को थोड़े कड़वे लगते हैं, लेकिन हृदय में विचार करना चाहिए कि अगर तन अगर ठीक ना हो तो स्वास्थ्य लाभ करने के लिए मन ना करता हो तो भी कड़वी औषधि पी लेनी चाहिए, क्योंकि बिना कड़वी औषधि के ये स्वास्थ्य ठीक भी नहीं होगा। तो उसी प्रकार अगर हमारा मन संसार में भटक रहा है, भोगों में लगा है, तो भक्ति के मार्ग को या इस वैधि भक्ति के मार्ग को कड़वी औषधि समझकर भी ग्रहण करना चाहिए। इच्छा पूर्वक भी शुरुआत में कोई अगर भगवान की सेवा करता है वो भी विधि भक्ति के अंदर ही आती है, क्योंकि प्रायः प्रथम दिन से भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो जाता, वो तो बाद में ही जागता है। इसलिए सिर्फ मन मानता है तो करे ऐसा आवश्यक नहीं होता है। दवाई खाने के लिए मन नहीं मानता, शुरुआत में स्कूल में बच्चा पढ़ने में इच्छुक नहीं, उसका मन नहीं मानता, लेकिन फिर भी कई सारी चीजें हम करते हैं। इसी प्रकार भक्ति भी कर्तव्य है, उसको कर्तव्य समझ कर ही करना चाहिए, इसमें मन माने ना माने ये बीच में नहीं लाया जाता। करना है मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं, सिर्फ करना ही है। और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य प्रायः गुरु की कृपा से तरक्की भी शीघ्र कर ले जाता है, अन्यथा नित्य शुद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबुनोय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। ये नित्य शुद्ध कृष्ण भक्ति है ना, ये जीव संसार में साधना करके सिर्फ उसी के बल पर प्राप्त नहीं कर ले जाएगा। प्रेम भगवत धाम की वस्तु है, उस प्रेम को जीव मात्र इस भौतिक जगत में अपनी जड़ अवस्था से साधना करके नहीं प्राप्त कर ले जाएगा, वो तो आध्यात्मिक जगत का पदार्थ है। इसके लिए उसको ऐसे महान वैष्णव के मार्गदर्शन के भीतर में उनकी कृपा में ही इसको अवलंबन करना पड़ेगा, क्योंकि ये नित्य शुद्ध कृष्ण भक्ति है, ये हमेशा होती है, भगवत धाम से आई है। साध्य कबून है, साधना से नहीं मिल पाएगी। ऐसे कोई सोचे मैं कठोर साधना कर लूंगा और हठपूर्वक प्राप्त कर ही ले जाऊंगा, सिद्धियां मिल सकती है, अनेक प्रकार का सुख भोग मिल सकता है, लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिल सकता। भगवत प्रेम हमेशा गुरुजनों की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो आज हम ऐसे महान भक्तों के चरित्रों का वर्णन करते हैं कि वो लोग अपने गुरु की कृपा को कितना महत्व देते थे, उनकी आज्ञाओं को कितना महत्व देते थे। तो भगवान के महान भक्त भारत में जिनका नाम भी बड़ा प्रचलित है, रैदास जी महाराज। रैदास जी जाति के चमार थे, लेकिन ये चमार कैसे बने उसके पूर्व में एक लीला आती है। रामानंदाचार्य के एक ब्राह्मण शिष्य थे, ब्रह्मचारी। वो रामानंदाचार्य के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे, और भिक्षा में भी क्या होता था, सिर्फ ब्राह्मण घर से चुटकी चुटकी आटा लेते थे और आटा लाके आश्रम में उसके बाटी या रोटियां बना के भगवान को भोग लगा के फिर पाते थे। तो ये ब्रह्मचारी ब्राह्मण जब भी भिक्षा करने निकलता ना, रास्ते में बनिया की दुकान आती और बनिया रोज आग्रह करता, चुटकी चुटकी आटा सब जगह से लेते, एक जगह हमारे यहां से भी ले लिया कीजिए। लेकिन गुरु जी की आज्ञा थी कि ब्राह्मण घर से लाने का, क्योंकि वहां थोड़े भी विधि विधान पालन होते ऐसी आशा है। और रामानंदाचार्य बड़े पहुंचे हुए संत भी थे, इसलिए बड़े कठोर नियमों का पालन भी करते थे। संत कृपा सबके ऊपर करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अपने कुछ निजी आचार व्यवहार भी होते हैं। रोज ये बनिया कहता, लेकिन ये ब्रह्मचारी कभी उनके पास से लेता नहीं। एक दिन के प्रसंग में भयंकर बारिश हुई और ये कहीं पर भिक्षा करने के लिए जा नहीं पाए। पास में बनिए की दुकान थी, वहां तक पहुंच गए। अब विचार कर रहे कैसे ले के ना ले, ये रोज कहता है हमारे यहां से लिया करो, हमारे यहां से कभी लिया करो, लेकिन लेते नहीं थे। आज सोचा कि चारों तरफ पानी है, कहाँ लेने जाएंगे, सोचा इन्हीं के पास से ले ही लेते। फिर बनिए के पास से आटा ले लिया। बनिया वैश्य जाति में आता है, लाके गुरुजी को दिया। गुरुजी ने बाटी बना के भगवान को भोग लगाया, भगवान को भोग लगा, लेकिन भगवान ध्यान में नहीं आ रहे। बार 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 लगा रहे, लेकिन भगवान ध्यान में नहीं आ रहे। वो विचार करने लगे, भगवान ध्यान में क्यों नहीं आ रहे, क्या ऐसी आपत्ति आ गई है। ब्रह्मचारी शिष्य को बुलाया कि आज तुम ये आटा कहां से लाए थे। तब ब्रह्मचारी ने कहा कि गुरुजी आज ऐसी विडंबना हो गई थी, तो आज मैं ब्राह्मण के घर से आटा नहीं ला पाया, आज मैं आटा एक बनिए के वहां से लाया हूं। गुरुजी ने जब सुना ना, तो बड़ी डांट लगाई कि तुमको आज्ञा की थी मैंने ब्राह्मण के घर से लाना, तुमने बनिए के घर से क्यों लाया आटा। कहता गुरुजी बारिश अधिक थी, मैं जा नहीं पाया था। लेकिन गुरुजी ने विचार किया कि बनिया इतना भी तो अपवित्र नहीं होता कि भगवान उसका अन्न ग्रहण ना करे। उन्होंने फिर ध्यान लगाया, तो ध्यान में पता चला वास्तव में आटा बनिए का भी नहीं था, वो आटा था एक चमार का। और चमार था तो बड़ा धनी व्यक्ति, लेकिन चमार को पुत्र प्राप्ति की बड़ी अभिलाषा थी, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। अरे पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा प्राय व्यक्ति को संसार में कई सारे ऐसे उपद्रवी कार्य भी करवाती है। ये पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा भी वास्तव में एक प्रकार का सूक्ष्म भोग ही होता है व्यक्ति का। जो जन्मा नहीं है उसकी सेवा करने की इतनी तीव्रता नहीं होती है, लेकिन जन्म लेने के बाद हमारे को जो सुख मिलेगा उसकी तीव्रता होती है। इसलिए वो भी एक प्रकार का सुख ही बता गया है, स्वार्थमयी सूक्ष्म स्वार्थ है ये। बनिए ने किसी चमार ने किसी ब्राह्मण से कहा होगा कि हमारे यहाँ पुत्र प्राप्ति हो नहीं रही, कुछ उपाय बताओगे? उसने कहा कि आपकी जन्म पत्री के अनुरूप तो लगता है कि आपको पुत्र होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ काशी में रामानंदाचार्य बड़े महान वैष्णव रहते हैं, वो आपसे कुछ भी ग्रहण कर ले तो आशीर्वाद के बदले में कुछ जरूर मिल सकता है। अब ये सोचा कि मैं चमारू, आचार्य मेरे वहां से क्यों स्वीकार करेंगे, इसलिए इसने क्या किया, बनिए को लालच दी। बनिए प्राय लालची होते हैं, प्राय शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं, सभी नहीं कह रहा, प्राय लालची होते हैं, क्योंकि हमेशा अर्थ के लोभ में रहते 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 अर्थ लोभी हो जाते। बनिया मरते मर सकता है लेकिन दुकान नहीं त्याग सकता, ऐसा स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का। जीवन भर एक ही काम करते करते बहुत आसक्त हो जाता है व्यक्ति, वहां पर छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है उसके लिए। बनिए को लोभ दिया था कि अगर तुम चुटकी भर आटा भी अगर आचार्य जी के पास पहुंचा पाए ना, तुमको प्रचुर धन दूंगा मैं। अब इसको कोई शौक नहीं था ब्रह्मचारी को रोज चुटकी भर आटा ऑफर करने का, उसको तो लोभ था कि ब्रह्मचारी ले जाएगा तो निश्चित मेरा लाभ तो होगा ही होगा, और संयोग से ले भी गया और रामानंदाचार्य ने भोग भी लगाया। लेकिन आपत्ति क्या हुई, भगवान ने भोग लिया नहीं। आचार्य जी को सारी बात समझ में आ गई, आचार्य ने बुलाया ब्रह्मचारी को, कहते तुमने क्या कर दिया, गुरु अवज्ञा कर दी तुमने, तुम एक चमार का द्रव्य लेकर आए और वो चमार लाभ आशा लाभ लेके बैठा हुआ है कि आचार्य जी के पास अगर मेरा कुछ भी द्रव्य पहुंचा तो निश्चित मुझे पुत्र मिल सकता है। अब उसने इतनी बड़ी आशा लगाई है कि आचार्य के पास कोई सामान पहुंचा मतलब आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। तो गुरु जी ने क्या किया, ब्रह्मचार्य को श्राप दिया, उसके भाग्य में पुत्र नहीं है, उसकी पत्री में भी नहीं बताता पुत्र, अब तूने बड़ी गलती की है, अब तेरे को श्राप देता हूं मैं, तू उसी चमार के घर में पैदा हो जा। गुरु वगैरह करने का परिणाम, इसलिए व्यक्ति को गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम कलयुगी जीव हैं, कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए गुरु को कष्ट भी दे देते हैं, गुरु कहते कुछ और हम करते कुछ और, इसलिए आध्यात्मिक तरक्की शीघ्र नहीं होती है। लेकिन जो निर्विवाद रूप से हर एक आज्ञा का निरपेक्ष रूप से पालन कर लेना, उसकी तरक्की हो भी जाती है। ब्रह्मचारी ने बिल्कुल विरोध नहीं किया गुरुजी के श्राप का, ठीक है जो आ गया गुरुजी, अगर मैंने गलती की है तो ये जायज है। कहते उससे क्या होगा, चमार की जो आशा है वो भी फलीभूत हो जाएगी और तुम उसके घर पे जाओगे तो तुमको भी शिक्षा हो जाएगी। समय संजोगवश चमार के घर पे पुत्र की प्राप्ति हुई। 1371 माघ पूर्णिमा को रैदास जी का जन्म हुआ, काशी में ही हुआ। 1256 में करीब रामानंदाचार्य जी का जन्म हुआ था और 1371 में करीब करीब 120 वर्ष के बाद रैदास जी का जन्म हुआ। लेकिन अद्भुत बात क्या थी, जन्म लिया उन्होंने उसी दिन से उनको पूरा याद था कि मैं पिछले 7 जन्मों से ब्राह्मण था, लेकिन गुरु अवज्ञा के कारण आज चमार के घर आया हूं। तो मैं आचार्य जी का शिष्य था तो चमार के घर आयो, ये माता तो चमार है, तो उससे दूध नहीं पीते थे। माँ बड़ा प्रयास करती थी उनको दूध पिलाने का, वो दूध को मुंह ही नहीं लगाते थे। कहते मैं ब्राह्मण हूँ, चमार के घर से दूध नहीं पी सकता मैं, तो दूध ही ना पिए, बड़ी समस्या हो गई। भगवत कृपा से कभी कभी भक्तों को अपने पिछले जन्मों की याद रहती है। जिस प्रकार भरत महाराज जी को याद रहा था मृग शरीर में जाने के बाद और जर बड़द के शरीर में जाने के बाद भी, काकभूषण जी को भी याद रहा था, गज के शरीर में आए हुए बैठे हुए जो महाराज इंद्रदुम्न थे उनको भी याद था कि वो पीछे क्या थे। तो भगवान की कृपा से जब जीव भजन करता है और किसी संयोगवश अगर उस शरीर में अगर भगवत भक्ति ना हो पाए तो कभी दूसरा शरीर मिले तो उसमें भगवत कृपा से भी जन्म याद रहते हैं। इनको भी अपना जन्म याद है, जैसे नारद जी को भी याद था कि वो पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, इस बार अभी नारद जी के रूप में आए हैं। ये भगवान की इच्छा से होता है। ये दूध नहीं पी रहे थे, अब चमार परिवार था उनको तो पूर्ण पता था कि ये पुत्र हमको आचार्य जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने बड़ी विनती की आचार्य जी के पास जाकर कि हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन वो दूध नहीं पी रहा है। और उसी समय भगवान ने भी प्रेरणा दी रामानंदाचार्य जी को कि तुम्हारा शिष्य का जो जन्म हुआ है लेकिन वो ऐसा हट करके बैठा हुआ है। आचार्य जी तो बड़े नियमों का पालन करते थे, आश्रम से बाहर भी निकलते थे ना, अनेक अनेक लोग दर्शन करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आज आचार्य जी अकेले निकले हैं और चमार के मोहल्ले में जा रहे हैं, सारे काशी के लोग इकट्ठा हो गए, आचार्य जी आज क्या लीला कर रहे, चमार के घर पे जा रहे। वो तो प्रत्यक्ष ऐसे चतुर्वर्ण में जो हिंद धर्म का पालन करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनका तो मुख नहीं देखते थे। अगर कोई दया करके पास आए और हृदय में बड़ी श्रद्धा है तो उसको उपदेश करते थे, अन्यथा व्यवहार के रूप में नहीं जाते थे कभी। साधुओं की अनेक मर्यादा होती है, हृदय में दया होना अलग बात है, मर्यादा रखना अलग बात होती है। किसी को भी भक्ति का उपदेश करने में कोई आपत्ति नहीं है अगर उसके हृदय में श्रद्धा है तो, लेकिन स्व निर्वाह करने के लिए कुछ मर्यादा का पालन भी होता है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर उन्हीं ब्राह्मणों के घर पर भिक्षा करते थे जो ब्राह्मण हरि भजन में लगे हो, और ब्राह्मण के घर पे ही भिक्षा करते थे, दूसरे घरों पे भी नहीं करते थे। महाप्रभु पतितों का उद्धार करते थे, इतने दया थी महाप्रभु में कि जगत का पतित से पतित का भी उद्धार करने में उनकी दया कम नहीं पड़ती थी, और उन्होंने किया भी जगह मदाई का उद्धार। दया करना भक्ति सिखाना एक बात है, निज भक्ति की रक्षा करना, व्यवहार निभाना, अपने स्वधर्म का पालन करना एक बात है। इसलिए व्यक्ति को भजन मार्ग की रक्षा करने के लिए आचार व्यवहार में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। इसका तात्पर्य ये नहीं निकाला जाता कि साधु पक्षपाती है या हीन घरों में नहीं जाते हैं। उनके लिए हीनता व्यक्ति के गुणों के ऊपर, उसके कर्मों के ऊपर निर्धारित होती है। रामानंदाचार्य ने भी अनेक जीवों का उद्धार किया है, उसमें सभी ब्राह्मण ही नहीं थे। कबीर जी भी उनके शिष्य थे, वो तो कोई ब्राह्मण जाति के नहीं थे। भक्ति सिखाना अलग बात होती है। चमार के मोहल्ले में गए, सारे लोग विचार करने लगे, आचार्य आज यहां क्या बात है। उसी रघु चमार के घर पे चले गए, उसकी धर्म पत्नी कहती है, आचार्य आशीर्वाद दो, ये हमारा बेटा मेरे से दूध नहीं पीता। आचार्य ने कहा बाहर बैठिए, हम जो मंत्र देंगे वो एकांत में देने वाला है, इसलिए आप बाहर बैठिए। बच्चा वहां लेटा हुआ है, उसने देखा गुरुजी आए, वो भी खुश हो गया, पूर्व जन्म याद था ना उसको। आचार्य ने उसको शिक्षा दी कि जो माँ होती है उसके अंदर वात्सल्य भाव होता है, इसलिए वो विशुद्ध प्रेम से दूध पिलाती है, इसलिए माँ का दूध पीने में तुम्हारी भक्ति की कोई हानि नहीं होगी, इसलिए तुम चमार समझकर उसको बस त्याग मत दो, उनका दूध पीने में तुमको कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए उसको ग्रहण किया करो। और तुम्हारी भक्ति का नाश वैसे भी नहीं होगा क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बड़ी सेवाएं की है, और इस जन्म में भी तुम महान भक्त बनोगे। और आचार्य जी ने उस नए जन्म में भी उनको दीक्षा दे दी। आचार्य के इतना समझाने के बावजूद भी उनके मन में एक भाव बना था कि माता तो वैष्णवी नहीं है, क्योंकि वैष्णव या वैष्णवी हो जाने से गुरु की कृपा से जीव के कई पाप निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि माता तो मेरी वैष्णवी नहीं है। तो आचार्य ने क्या किया, उनकी माता को बुलाकर सिर्फ रैदास जी के लिए उनकी माता को भी दीक्षा दे दी और उनको आश्वासन दिया, अब तुम्हारी माँ भी मेरी शिष्य है। हाँ, अब जब इतने बड़े आचार्य का कोई शिष्य बन जाता है, फिर वह बीच में जाति नहीं लाते, तो रैदास जी ने भी स्वीकार कर लिया उनकी माँ से दूध पीना। तो दीक्षा के संबंध में बृहद नारदीय पुराण के पूर्व भाग में भी आता है, दिव्यम भावम यतो दधात क्षीणु याद दुरितानि च अतो दीक्षिति सा प्रोक्ता सर्वांगम विषादरे। अर्थात प्रसन्न जनों को दिव्य भाव प्रदान करती है तथा उसके समस्त पापों का नाश करती है, अतः सर्वशास्त्र निष्णात जन उसे दीक्षा कहते हैं। समर्थवान गुरु ही शिष्य को दीक्षा दे सकता है वास्तव में, क्योंकि उसके पास पापों को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। जो शिष्य के पापों को ग्रहण करके उसको शुद्ध कर पाता है वही गुरु योग्य होता है दीक्षा देने के लिए। वैसे दे तो दे कोई दूसरा व्यक्ति, देने में क्या जा रहा है, लेकिन वो लगी कि नहीं लगी दीक्षा, उसके पाप गए कि नहीं गए, वो कौन जानता है। इसलिए ऐसे आचार्य से दीक्षा अगर कोई जीव प्राप्त करता है तो निश्चित वो अपने पापों से मुक्त होता है। तो जब उनकी माता की वैष्णवी दीक्षा हो गई तब रैदास जी के मन में बड़ा संतोष हुआ, अब कोई चिंता नहीं, अब तो ये भी हमारे आचार्य के ही शिष्य है। तो एक ब्राह्मण थे विद्यारण्य मुनि, वो गायत्री का पुरस्चरण कर रहे थे। पुरस्चरण में बड़ी विधि लगती है, खाना पीना आसन आदि की, और गायत्री माता के 23 पुरस्चरण किए उन्होंने, लेकिन गायत्री माता के कोई कृपा महसूस नहीं हुई, कोई दर्शन नहीं हुए। आखिर उन्होंने सोचा कि मैं इतने कठिन पुरस्चरण कर रहा हूँ लेकिन कोई कृपा तो हुई नहीं, फिर झुंझला के सब छोड़ छाड़ के संन्यास दीक्षा ले ली। जो संन्यास दीक्षा ली तुरंत गायत्री माता प्रकट हो गई, कहती है मैं इतना आपकी सेवा करता था तब तो आपने कृपा की नहीं, और आज मैंने संन्यास ले लिया, तब आपने दर्शन दिया, उसका क्या प्रयोजन है? कहते पिछले जन्म में तुम्हारे भयंकर 24 अपराध थे, इसलिए वास्तव में तुमको 24 पुरस्करण करने चाहिए थे, तुमने 23 पे रोक दिया। अगर 24वां करते तो भी मेरा दर्शन हो जाता था, लेकिन तुमने 23वां छोड़कर 23 करके छोड़ दिया और 24वें रूप में दीक्षा ली संन्यास की। तो संन्यास भी अपने आप में जब दीक्षा लेते हैं तो वो भी अपने आप में पवित्रता है, तो वो भी 24 पुरस्करण हो गया। तो गायत्री माता ने संन्यास को भी एक पवित्र कार्य मान लिया कि इसने दीक्षा ली है तो ये भी एक पवित्र कार्य हो चुका है। तो किसी महान संत से दीक्षा ग्रहण करना ये भी अपने आप में ही बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो गायत्री माता ने उनकी दीक्षा को भी एक पुरस्करण बताते हुए, वो भी शुद्धि की प्रक्रिया बताते हुए उनको दर्शन दिए। लेकिन होता क्या है, सदगुरु बड़ी कृपा करके जीवों को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन जीव अपनी समझ से अपने हरकतों से बाज नहीं आता और वापिस वहीं गिरता है। प्रभुपाद ये कथा भी बता देना, पुनः मुसीका भव। एक साधु के पास चूहा आया, कहते महाराज बड़ी दया कर कृपा करो, बड़ी समस्या है। कहते क्या समस्या है, बिल्ली मार रही है। साधु के हृदय में दया आ गई, उन्होंने कृपा कर दी। कहते क्या चाहिए, कहते बिल्ली बना लो तो बिल्ली बिल्ली को मारेंगे नहीं, बिल्ली बना दिया। थोड़े दिन बाद फिर आया, बिल्ली बन बिल्ली आई, महाराज कृपा करो कृपा करो, बड़ी समस्या है, भय लग रहा है। कहते किस सका, तो कहते कुत्ते का। क्या चाहिए, कहते कुत्ता बना दीजिए। वो भी बना दिया। कुत्ता आया थोड़े दिनों के बाद, भय लग रहा है। कहते किसका भय लग रहा है, कहते शेर का भय लग रहा है, कहते शेर बना दो। अब शेर बन गया, किनकी कृपा से चूहे से शेर बना ये भूल गया। यही सबसे बड़ा दोष है हमारा कि किनकी कृपा से बने, जो भी कुछ है अभी जीवन में किनकी कृपा से, लेकिन जीव यही भूल जाता, यही अहंकार है। अब भूल गया किनकी कृपा से बने थे, अब शेर बन के वहीं पर धाड़ रहा है। साधु कहते क्या प्रॉब्लम, क्या अभी क्या प्रॉब्लम है। कहते प्रॉब्लम ये है कि भूख बहुत लगी है। तो क्या विचार है तुम्हारा, भूखे के सामने भोजन है, सोच रहा हो कि इसको ग्रहण कर लो, यही विचार है। गुरुजी कहते शाबाश बेटे, ऐसे चेले होते कलयुग में। चूहा था, इतना दुखी था, इतनी कृपा करके तुमको यहां तक लाए, सब भूल गए, कितने कष्टों से बाहर निकला वो भी भूल गए, और आज गुरु के ऊपर ही प्रहार। ये भूल गया कि जो गुरु यहां तक ला सकते हैं वो वापस भी पहुंचा सकते हैं। गुरु भक्ति से शिष्य इस अधम प्रकृति में से निकल के दिव्य वैष्णव प्रकृति में स्थापित हो सकता है, तो कभी गुरु अवज्ञा करने से वापस अधम परिस्थिति में भी जा सकता है। ये याद रखना चाहिए, गुरु कृपा जितनी महत्वपूर्ण होती है ना, अगर गुरु चरणों में अपराध हो तो वो भी उतना ही भयंकर भी होता है, वापिस वही स्थिति आ जाती है। गुरु ने वापिस बनाया, पुनः मुशिका भव, चूहा था वही बराबर था, वही बन जा वापिस। अब चूहा बन के इधर उधर भाग रहा है, परेशान है, अब कौन रक्षा करे। जो रक्षा करने वाले थे उनके प्रति हमने द्रोह कर दिया। तो इसलिए गुरुजनों की कृपा से निश्चित जीव के पाप कट जाते हैं, लेकिन जो शिष्य गुरु के चरणों में श्रद्धा नहीं रखते और गुरु के प्रति ही द्रोह करते हैं, ऐसे शिष्य जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। कहते दीक्षा ली पाप कहाँ गए, कहते गए तो थे लेकिन उससे अनेक गुना होके वापिस भी आ गए। इसलिए दीक्षा लेना है बहुत बड़ा भक्ति मार्ग में महत्वपूर्ण कार्य है, और उससे भी महत्वपूर्ण कार्य है जब तक शरीर है तब तक ऐसे गुरुजनों के चरणों में रहकर भजन किया जाए, उनकी आज्ञाओं का पालन किया जाए, ये उससे भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो रहीदास जी अपने गुरु जी के आशीर्वाद से इस जन्म में भी दीक्षित हो गए और दिन प्रतिदिन अभी भक्ति मार्ग में उनका झुकाव होता जा रहा है। सामान्य रूप से रैदास जी का झुकाव साधुओं में हो गया, श्रेष्ठ साधु का झुकाव साधु में होता ही है, इसकी पहचान है। पिताजी घर से अमीर थे, अब रैदास जी को साधु सेवा करने का चस्का लग गया और नशा सा हो गया उनको, तो जो उनके पास आए ना वो पदार्थ साधु को दे दे, कुछ पैसा है तो साधुओं को पैसा भी दे दे, और बड़ी बड़ी सुख का अनुभव करे वो कि हाँ साधु सेवा हुई। कभी कभी ना आए तो घर में जाए और पिताजी की जो अलमारी थी उसमें से कुछ चोरी करे, मुट्ठी चोरी करे मुद्राओं की और भाग जाए, और साधुओं को बाजार में जाके किसी को कमंडलू दिला दे, किसी को कंबल दिला दे, किसी को पादुकाएं दिला दे, किसी को भोजन का पदार्थ दिला दे, जो चाहिए दिला दे, सब सब लुटा के वापिस आ जाए। ऐसा कई दिन चलता रहा। एक दिन माता ने देख लिया तो मुट्ठी बंद करके जा रहे थे, माता ने सोचा कोई मिठाई ले जा रहा होगा, भूख लगी होगी, बच्चे की आदत होती है, माता ने ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन के बाद माता को भी पता चल गया ये मिठाई नहीं ले जाता है तो पैसे ले जाता है, लेकिन एक ही पुत्र था इसलिए पुत्र मुंह में माता ने कुछ ज्यादा बोला नहीं, ठीक है चलो कोई नहीं, नहीं बोला। लंबे अंतराल के बाद उनके पिताजी ने जब अलमारी खोल के सब द्रव्य देखा तो द्रव्य तो करीब करीब पूरा होने की कगार पे था। बड़ा क्रोधित हुए वो, रैदास जी को बुलाए, क्या किया तुमने ये? कहते पिताजी जिसका धन है ना उनको अर्पण कर दिया, जगत में सब कुछ प्रभु का है, प्रभु के संतान तो प्रभु के शुद्ध भक्त होते हैं, तो प्रभु की संपत्ति के ऊपर उनके पुत्रों का अधिकार होता है ना कि हमारा अधिकार होता है। लॉजिक भी बराबर था, पिता की संपत्ति पुत्र के पास जाती है और भगवान के जो सबसे आज्ञाकारी पुत्र कौन होते हैं? भगवान के महान भक्त, ना कि नालायक पुत्र, ठीक है ना। हम सब लोग तो भजन नहीं करते, हम तो नालायक पुत्र में आते हैं, इसलिए नालायक पुत्र को तो क्या किया जाता है, अब संपत्ति से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो रैदास जी का भाव बड़ा अलग था, पिताजी झुंझलाए, बड़ी डांट फटकार लगाई उनको, लेकिन उनका स्वभाव जा नहीं रहा था सेवा करने का। तो क्या हुआ, पिताजी डांटते रहे, बीच बीच में भी कलह क्लेश होता रहा, रैदास जी मौका देके सेवा कर ही लेते। फिर भी समय परिस्थिति, रैदास जी का विवाह हो गया, लेकिन रैदास जी का ये जो स्वभाव था सेवा करने का वो गया नहीं। एक दिन पिताजी को बड़ा क्रोध आया और पिताजी ने दोनों पति पत्नी को एक फूटी कौड़ी दिए बगैर घर से ऐसे के ऐसे कपड़ों में निकाल दिया, निकलो बाहर और खुद मेहनत करो और खुद जो करना है करो, जाओ। इसको कहते संसार। पुत्र प्राप्ति करने के लिए बनियों को रिश्वत दे रहे थे कि ताकि आचार्य उनके घर से कुछ ले जाए, कुछ स्वीकार करे उनके घर का। इतनी मिन्नतों से मिला हुआ जो पुत्र है, संपत्ति के कारण पुत्र के ऊपर से मन भर आया और संपत्ति की रक्षा करने के लिए पुत्र को घर से निकाल दिया बाहर, है ना अटपटी बात। इसी को संसार कहते हैं। हमारे गुरु शुरुआत में हमको कहते थे सब संसार में संबंध स्वार्थ के होते हैं, लेकिन ठीक तरीके से नहीं समझते थे ये बात कि सब स्वार्थ के ही होते हैं। उन्हीं की कृपा से अब समझती है कि सब संबंध स्वार्थ के ही होते हैं। कोई कहता सारे स्वार्थ के, कहते सारे के सारे स्वार्थ के होते हैं। कहते कई बार लगते नहीं ऐसे लेकिन स्वार्थ के होते, लेकिन लगते नहीं है वो हमारी बीमारी है क्योंकि हम उसी के बीच में बैठे हैं। जब वहां से उठ के बाहर निकल जाएंगे प्रभु चरणों में तब बराबर लगेगा कि ये भी स्वार्थ के ही होते। बड़े बड़े लोगों के जीवन में ये घटनाएं हो चुकी है कि संबंध कैसे स्वार्थ के होते हैं। हम तो कलयुग में वास कर रहे हैं। कहते हर संबंध की भी अपनी एक परीक्षा होती है, उसी से जांच पड़ताल होती है परीक्षा की घड़ी में कि वो संबंध कितना स्वार्थ का था। तो रैदास जी तो समझ गए ये जगत है और यहाँ जगत में तो स्वार्थ की ही बोलबाला है, इसलिए रैदास जी को इस बात को लेकर दुख नहीं लगा कि उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, इस बात का कोई दुख नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच के रखा था। अभी क्या हुआ, उन्होंने सोचा बहुत अच्छी बात है, पति पत्नी दोनों निकल गए और ऐसे खुले में ही रैदा जी बैठ गए। उनको जूते बनाना तो आता ही था चमड़े के, तो अपना वो काम काज उन्होंने शुरू कर दिया जूते बनाने का। ऐसी परिस्थिति में भी कोई वैष्णव आए ना, तो वैष्णव के पैरों को ऐसे रखेंगे, हाथ लगाएंगे, नाप लेंगे उसका ठीक तरीके से, सब देखेंगे ऊपर नीचे करके, और फिर उसको फ्री में जूते बना के देंगे साधुओं को। ये भाव तो गया नहीं था उनका अभी भी। तो ये साधुओं को बड़े प्रेम से ऐसे जूते बना के देते थे ना, तो उसी बहाने क्या होता था, उनको सब साधुओं के चरणों का स्पर्श करने का मौका लग जाता था। अब नाप लेना हो तो भगवान कहते ये खूब कमाई करता ही है, खूब साधुओं की कृपा मिलती है इसको, कभी इसके पास जाना पड़ेगा एक दिन। भगवान आ गए रूप बदल करके, भगवान साधु के वेश में आए रूप बदल के। अब क्या हुआ, कहते भगवान के दर्शन कैसे हो गए, एक राजा ने बहुत सुंदर सा उद्यान बनाया था और उसमें सरोवर भी बनाया था बड़ा रमणीय, तो अनेक अनेक पक्षी लोभ के वशवान नीचे आते थे अनेक अनेक जगहों से। तो एक दिन हंस आकाश में उड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर पक्षी नीचे है, हंस भी नीचे आए उन पक्षियों को देखने के लिए। तो कहते जिन हंसों के दर्शन करना स्वाभाविक रूप से कठिन होता था, राजा को अपने आप हो गए। कहते किसके कारण, उन पक्षियों के कारण। तो कहते इसी प्रकार कहते अनेक संत रूपी पक्षी रैदास जी के वहां आते थे, तो हंस रूपी भगवान भी एक दिन आ ही गए, क्योंकि भक्त तो वहां तो होते थे, तो भगवान भी लोभवश वहां पहुंच गए। भगवान जूता बनाने के लिए तो नहीं आए, क्योंकि भगवान रैदास जी के साथ थोड़ा हास प्रयास करना चाहते थे, साधु का वेश बनाकर आए। कहते कुछ भिक्षा चाहिए, उन्होंने कहा महाराज आटा चावल दाल ये सब अलग अलग ले लो, चूल्हे पे पका के खा लीजिए। कहते क्यों, कहते आप ठहरे ब्राह्मण हम ठहरे चमार, इसलिए हम क्या करते हैं द्रव्य दे देते हैं, कोई द्रव्य से बना लेता है, क्योंकि हमारे हाथ का बना खाएंगे तो आपका तो सब भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान कहते देखो भाई हम लोग ना आलसी प्रकृति के हैं, हम पका पकाया थाली में खाते, हम कोई मेहनत मजदूरी नहीं करते, वैसे ही भगवान बैठ के आराम से खाते हैं ना, थाली आ जाती है भगवान के सामने रोज की रोज। और वैसे भी प्रभुपाद कहते थे कृष्ण कुछ नहीं करते, कृष्ण क्या करते बस आनंद लीला करते राधा रानी के साथ, बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण का मूल काम यही है, और उतने में वो सब कुछ कर भी लेते हैं। कृष्ण का मूल काम बस यही, बस सिर्फ आनंद करना। भगवान कहते ये चूल्हा चौका हमसे नहीं चलने वाला, अग्नि चेताओ धुआं उड़ाओ और धो सामान करो ये सब हमारे से नहीं होता, पका पकाया दो। कहते महाराज हमारे घर से पका पकाया तो आप नहीं ले सकते, अगर आपने ले लिया ना तो जमात में लोग आपको बैठने नहीं देंगे, बाद में आपकी पूरी जाति खराब हो जाएगी। भगवान कहते हम ये सब कुछ नहीं समझते, हमने सुना है कि तुम्हारी जो घरवाली है ना वो दही अपना कड़ी पकौड़ी बहुत बढ़िया बनाती है भात के साथ, ऐसा समाचार मिला है हमको। कहते बनाती तो है लेकिन आपको कैसे खिलाए। भगवान कहते हम थोड़े अलग प्रकृति के साधु हैं, जाति पाति नहीं मानते, ठीक। अब भगवान हट गए कि भाई हमको कड़ी पकौड़ी खानी है। अब रैदास जी करते तो करते क्या, साधु भी है, बार बार मना भी नहीं कर सकते कि नहीं खिलानी ऐसा। तो भगवान साधु के वेश में कहते क्या बात करते हो रैदास जी, सबरी के झूठे बेर रामचंद्र जी ने नहीं कहे थे, तो रामचंद्र जी तो अपवित्र नहीं हुए तो मैं कैसे अपवित्र हो जाऊंगा। चोखा मेला जी के केले खाए भगवान ने, भगवान तो को अपवित्र नहीं हुए, हम कैसे अपवित्र हो जाएंगे, क्या बात करते आप। भगवान ने कई सारे दृष्टांत वहां पर रख दिए साधु वेश में, कहते आप व्यर्थ में चिंता करते, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप दो हम खाएंगे हमारा पेट भर जाएगा, काम हो गया। कहाँ फिर बीच में जाति आ गई। अब बार बार भगवान ने जब ऐसा आग्रह किया ना, अब रैदास जी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो रैदास जी ने क्या किया, घरवाले को बोला ये साधु बड़े हठीले जिद करके बैठे, कड़ी पकौड़ी और चावल बनाया और वहीं पर भगवान बैठ के खाए और बड़ा आनंद का अनुभव किया उन्होंने। कहते बड़ा आनंद आया, अब हमने खाया है तो कुछ देना भी तो पड़ेगा तुमको, हाँ कुछ तो ले पारसमणि दे जाते तुमको। कहते महाराज हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को पारसमणि का कोई काम नहीं है। कहते नहीं फिर भी रखो, शायद काम पड़ जाए। वो पीछे ही पड़ गए, नहीं देनी देनी है, देनी है, रख दो यहाँ पर, अगर आपका मन करता है तो रख दो। भगवान ने रख दी पारसमणि। अब क्या हुआ, कई महीनों के बाद प्रभु फिर वापिस आए। रैदास जी हमने पारसमणि दी थी, उसका कोई उपयोग किया कि नहीं किया। कहते महात्मा जी वो पारसमणि वहीं रखी है जहां आपने रखी थी, मैंने तो देखी भी नहीं है, आप वहां से ढूंढ के ले लीजिए अपनी पारसमणि। कहते इसका उपयोग करते थे ना, इसका उपयोग क्यों नहीं किया। कहते इससे हमको बड़ा कष्ट होता है, लेकिन सच्चे साधुओं को भौतिक जगत का जो द्रव्य होता है, जिनको तो सिर्फ अपना भजन में मस्त रहना है ना, ऐसे तो ब्रज में कई साधु है जो पैसे को भी हाथ नहीं लगाते, ये सोच के कि अगर लगा लिया मतलब के लगा लिया मतलब कि अगर उसका आश्रय ले लिया तो क्या पता भगवान का आश्रय शायद चला ना जाए कहीं। इसलिए जो सच्चे साधु होते हैं जिनको अपने ही जीवन में मस्त रहना होता है, ऐसे साधु लोग तो इससे दूर ही रहते हैं। और दूसरे प्रकार के साधु होते हैं जो द्रव्य को भगवान की सेवा में लगाना जानते हैं, उनको अभ्यास होता है, बिना फंसे वो लेते भी है और लगाते भी है। प्रभुपाद कहते थे हमको जितना दिया जाए ना उतना कम है, हम सब लगा सकते कृष्ण के चरणों में, पूरा संसार भी लगा सकते हैं, पूरे संसार को भी घर बना सकते हैं। ये प्रभुपाद जी के पास वो अनुभव है कि अनेक पदार्थों को कृष्ण की सेवा में कैसे उपयोग में लिया जाए। लेकिन रैदास जी तो अपने जीवन में रहने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बाहर का कोई काम करना नहीं था, इसलिए वो इस प्रकार के द्रव्य से दूरी रहते थे, वो भजनानंदी प्रकृति में थे। तो एक संत कहते व्यास कनक उरु कामिनी ये लंबी तलवार, कहते कनक कामिनी बहुत बड़ी लंबी तलवार है, तो कहते आए थे हरि भजन को बीचे लीगने मारी, और जब ये लगती है ना तो बस दो टुकड़े ही करती है जीव के। तो ये तो कनक कंचन ये जो कामिनी है, ये तो अगर व्यक्ति उसके उलझन में पड़ जाए, उसको ठीक तरीके से मैनेज ना कर पाए, तो उसका तो सारा आध्यात्मिक जीवन ही जा सकता है और ये भौतिक जीवन भी डूब जाएगा उसके चक्कर में ही। तो कई महान संतों ने इसके विषय में हम सब लोगों को सचेत किया है, इसकी आवश्यकता कृष्ण की सेवा के लिए हो सकती है, ये अलग बात है, लेकिन सिर्फ यही भगवान बन जाए तो ये डुबा देंगे। तुलसीदास भी कहते थे तुलसी कबहु की रही सके रवि रजनी एक ठाम। तुलसी जी कहते थे कि एक ही जगह पर भगवान और भगवान की माया एक जगह पर कहां से रहेंगे, ये तो संभव नहीं है। तो रैदास जी कहते थे कि महात्मा जी ये पारसमणि हमको बड़ा कष्ट देती, इसको ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। साधु वेश में भगवान ले गए। अब क्या किया, ले तो गए वहां से, लेकिन ऐसा कुछ लीला कर दिया उन्होंने, कहते पारसमणि ले जाते हैं कोई बात नहीं। अब क्या लीला हुई, उनके जो भगवान थे ना रैदास जी के, रोज उनके सिंहासन के ऊपर 5 सोना मोहरे प्रकट हो जाए। अब रैदास जी ने देखा पहले दिन ये कहां से आ गई, हम जितना पीछा छोड़ा रहे वहां से वापस आ जाती है। तो रैदास जी चिमटे से मुद्रा पकड़ के ऐसे कटोरे में डाल के फिर वो जाके गंगा में फेंक देते। फिर दूसरे दिन वापस 5 मुद्रा प्रकट हो गई। तो दूसरे दिन भी जैसे चिमटे से पकड़ पकड़ के डाल दे और फेंक दे, तो एक दिन अपनी धर्म पत्नी को क्या कहते, घोर कलयुग आ गया कहते। हाँ, कैसा घोर कलयुग आ गया है कि संत पारस मणि देते हैं और भगवान सोना मोहरे देते हैं। कहते ले दे के खीस्तान के दोनों ही नरक में डुबाने का काम कर रहे कहते। पहले वाले संत पारस मणि दे गए नहीं ली, तो यहां प्रभु खुद ही रोज 5 मुद्रा बाहर छोड़ देते हैं। रैदास जी भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे को क्यों संकट में डाल रहे हो। भगवान भी जिद कर रहे, रैदास जी देखो तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तुमको ऐसा जिद नहीं करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, ये जो 5 मुद्रा में देता हूं ना इसका उपयोग करो। अब रैदास जी बड़ी विडंबना में पड़ गए कि प्रभु ऐसा डांट के आज्ञा का पालन करवा रहे क्या करे। तो रैदास जी ने क्या किया, उनका रहन सहन खान पीन तो जो था ना वैसा ही रखा, लेकिन वो जो 5 मुद्राएं रोज प्रकट हो जाती थी उससे उन्होंने सबसे पहले वैष्णव के लिए एक निवास स्थान बनाया बड़ा सा, फिर भगवान के लिए मंदिर बनाए, अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं शुरू करवाई और भंडारे खोल दिए। जो भी साधु आए प्रचुर मात्रा में भंडारा खाओ और अनेक प्रकार की दक्षिणाएं ले जाओ। अब रैदास जी के नाम पे उनका खाना पीना तो वही है जैसा चलता है, उनकी वही चमार की कामगिरी चल रही है, लेकिन यहाँ रैदास जी के नाम पे बड़े बड़े भंडारे और मंदिर और साधु संतों का आवास स्थान सब कुछ हो गया। अब इस बात से द्वेषी लोग खड़े हुए, रैदास जी सड़क पे बैठ के जूते चप्पल बनाता है, न जाने पैसा इतना कहाँ से लाता है, इतना सारा कर कैसे दिया उसने। अभी क्या हुआ कि अनेक प्रकार के उनके दुश्मन खड़े हो गए और भगवान भी उसमें हमारे बड़े विचित्र प्रकृति के है ना, भगवान भी क्या करते हैं गजब गजब की लीलाएं करते हैं। ब्राह्मणों के मन में प्रेरणा दी, ये रैदास कहाँ से पैसा लाता है, चोरी तो नहीं करता कहीं, हाँ कोई गलत तरीके से तो नहीं लाता, राजा को जाके सूचना दो तो ठीक काम नहीं कर रहा है, उसका विरोध करो सब लोग मिलके। हाँ ऐसे भंडारे चला रहा है साधुओं को खिला रहा है चमारों के, तो ठीक बात नहीं, विरोध करो सब लोग। अब सब ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, सब ब्राह्मण इकट्ठे हो गए और सारे ब्राह्मणों ने क्या किया, एक मत से रैदास जी का विरोध कर दिया पूरे काशी में। ये भी भगवान की योजना थी, भगवान पहले नहीं लेते थे तो जबरदस्ती कहते ले, अब ले लिया, अब ले लिया तो कहते हैं ब्राह्मणों को विरोध करो कहते इसका। भगवान क्यों विरोध कराना चाहते हैं, ये भी बड़ा अच्छा भाव है भक्तों का। अनेक द्वेषी लोग हमेशा भक्तों के विरोध में रहते हैं ताकि भक्त लोग कभी माया में ना गिर जाए, भक्त लोगों में कोई कभी गलती आ जाए तो तुरंत उनका ध्यान हो जाए, क्योंकि अनेक द्वेषी लोग ऐसे बाज नजर लगा के बैठे हैं कि कब गलती करे कब गलती करे, इसलिए भक्त लोग हमेशा चौकन्ने रहे कि गलती नहीं करनी। इसलिए कि भगवान ने द्वेषी भी बराबर साथ में बिठा के रखे होते, हर भक्त के चरित्र में बराबर उसके साथ द्वेषी भी बैठे होते ताकि भक्त के चरित्र में और निखार आए और भक्त का चरित्र खिलकर प्रकट हो जाए, ऐसा भगवान की योजना है। इसलिए द्वेषी लोगों से क्या होता है, द्वेषी लोग हमेशा कुछ ढूंढते हैं भक्तों के चरित्र में, क्या कहते दोष, तो शोध करता है द्वेषी, क्या है शोध करता है, कुछ ढूंढते हमेशा, इसलिए भक्त हमेशा चौकन्ना रहता है। और वो चौकन्ना रहता तो उसके कारण उसकी शुद्धि भी हो जाती है, क्योंकि अनेक लोग राह देख के बैठे तो वो ठीक तरीके से चलता है तो शुद्धि भी हो जाती है, और शुद्धि होती तो सिद्धि भी मिल जाती है, और सिद्धि मिलती है तो प्रसिद्ध भी हो जाता है सारे जगत में। इसलिए कहते हैं भगवान ने द्वेषी लोगों को खड़ा किया है भक्तों को प्रसिद्ध करने के लिए मात्र, कहते ऐसे द्वेषी खड़े हो जाएंगे बीच बाजार में ढंडोरा पीटेंगे और भक्त आएंगे फिर, और भक्त परीक्षा में पास होंगे और बीच बाजार में फेमस होकर घर चले जाएंगे। इसलिए द्वेषी लोगों ने भगवान ने रखे है किस लिए, भक्तों को प्रसिद्ध करने के लिए। अब रैदास जी का नाम का इतना बबाल मच गया काशी में, राजा को बोला इस पता करो पहले लाते कहां से, सब पता करो पहले। राजा ने रैदास जी को बुलाया, कहते हैं आप जाति के चमारों कर इस प्रकार के कार्य करते हैं, बड़े सारे ब्राह्मण आपका विरोध करते हैं, ये क्या आप उचित कार्य नहीं कर रहे, मंदिर बनवाया है आपने और उसमें सेवा पूजा चलती है, ये तो ठीक कार्य नहीं है, ऐसे बड़े सारे इल्जाम लगाए गए रैदास जी के ऊपर। अब रैदास जी समझाने का प्रयास कर रहे लेकिन वो ब्राह्मण जिद्दी मान नहीं रहे। ब्राह्मणों ने राजा को कहा कि एक काम करते हैं, सिंहासन के ऊपर इनको बोलो अपने प्रभु को बिठाए और हम वेदों का पाठ करके प्रभु को बुलाते हैं और इनको बोलो ये प्रभु को अपनी इच्छा से बुलाए जो वो समझते हो वैसे, और भगवान जिसके पास चले जाए वो सत्य है। राजा ने मान लिया, ठीक है बात, सिंहासन पर भगवान बिठा दिए गए। ब्राह्मणों को बोला तो ब्राह्मण तो अपने मृग चरम ले आए और कमंडल और दंड और सब चीज ले आए, बड़े सारे अलग अलग प्रकार के द्रव्य ले आए और लगे वेदों का पाठ करने के लिए। बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, भगवान तो वहां हिलने के लिए तैयार नहीं अपनी जगह से। अब रैदास जी का नंबर लगा तो रैदास जी तो कोई वेदों का पाठ नहीं, सीधा भगवान के चरणों में पद गायन शुरू कर दिया उन्होंने तो, कि प्रभु आप तो प्रेम के प्यारे और आप तो प्रेम से सब कुछ करना जानते हैं और द्रौपदी प्रेम से बुलाती तो आप तो झट आ भी जाते हैं, तो भगवान ने भगवान के प्रति ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार उन्होंने निभाया ना, भगवान तो उड़ के सीधे उनके गोद में जाके बैठ गए। राजा ने दृश्य देख लिया कि रैदास जी की गोद में भगवान जाकर बैठ गए। ओहो, ये तो रैदास जी तो वाकई बड़े महान है, फिर तो उनकी ख्याति और फैल गई कि रैदास जी ने परीक्षा दी थी और परीक्षा में रैदास जी पास भी हो गए। तो इस प्रकार से संतों को बदनाम करने के लिए अनेक लोग खड़े होते हैं, प्रतिकूल भाव वाले जब लोग खड़े होते हैं तो संतों की महिमा बढ़ती है। ध्रुव के सामने माता खड़ी हो गई तो ध्रुव को भगवान मिले, प्रहलाद जी के सामने बाप खड़ा हो गया तो प्रहलाद जी को भगवान मिले। तो इस प्रकार से विरोधी लोग खड़े होते तो भक्तों के गुणों में वृद्धि होती है, वो और अच्छी तरीके से भगवत भजन में लगते हैं। तो रैदास जी का ख्याति और फैल गया। अब जब ख्याति फैल गया तो समय के प्रभाव में एक दिन चित्तौड़ नगर की जाली नाम की रानी गुरु की खोज करने के लिए भारत यात्रा करने निकली थी। कहते जिनको देख के सामने से गुरु बुद्धि जागृत हो जाए, बस देखे और लगे कि बस यही गुरु होने चाहिए, ऐसी गुरु बुद्धि जब जागृत हो जाए उन्हीं को गुरु बनाएंगे। भ्रमण करती 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 काशी तक पहुंच गए, वहां अनेक ब्राह्मण आए, उनको पता है कि ये चित्तौड़ की रानी है और गुरु ढूंढने निकली है, तो सब लोग सोचते हो सकता है शायद हमको ही गुरु बना ले। अनेक लोग आए और उसको दर्शन करा रहे, उनको मिले, सब जगह घुमाने के बावजूद भी किसी ने ये नहीं बताया कि यहां रैदास भी है। लेकिन उसने रैदास जी की ख्याति सुनी थी तो उन्होंने सामने से पूछा कि मैंने सुना है चित्तौड़ में एक अच्छे संत है रैदास जी। और ब्राह्मण कहते हैं कोई इतना भी विशेष नहीं है, वो तो जूते चप्पल बनाता है, वो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, तो चमार है। कहते उनको भी एक बार मिल लेते हैं। अब रानी ने कहा तो इनका मन नहीं था लेकिन ले आए। रानी आई और रानी ने आके जब रैदास जी को प्रथम बार देखा ना, रैदास जी अपने बैठे बैठे जूते का काम कर रहे थे, रानी ने प्रथम बार देखा ना तो उन रानी को उनमें स्वयं राम जी के दर्शन हो गए और फिर रैदास जी के दर्शन हो गए। रानी को लगा ये तो वास्तव में मेरे गुरु बनने होंगे, साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े दिव्य महात्मा है। रानी ने कहा हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। रैदास जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसने फिर कहा हम आपको गुरु स्वीकार करना चाहते हैं। रैदास जी कहते हम तो चमार है, आप तो रानी है, क्षत्रिय परिवार से आए। तो रानी ने बड़ी विनम्रता से कहा हम जाति पाति नहीं मानते, हम तो आपके गुणों को देख रहे, हमको जाति में ऐसा कोई आपत्ति नहीं है। अभी क्या हो गया, रानी ने जब बहुत आग्रह किया तब रैदास जी ने उनके भाव को देखते हुए उसको दीक्षा दे दी। अब जब दीक्षा दे दी तो फिर बवाल हो गया। पहला मंदिर बना था, सेवा पूजा होती थी, तो कि चमारों के ब्राह्मणों का काम कर रहे हैं, वो बवाल हुआ था। अब दीक्षा हुई तो इन्होंने राजा को फिर कहा, महाराज अब ये तो दीक्षा भी देने लग गया, दीक्षा देने का काम ब्राह्मण का था, ब्राह्मण गुरुपद पे है, हाँ तो ये तो दीक्षा भी देने लगा, ब्राह्मणों को डर लग गया ये ऐसे दीक्षा देगा हमारा क्या होगा फिर बाद में, क्योंकि जो लोभी प्रकृति के ब्राह्मण होते हैं उनको क्या होता है कि भूदेव भूदेव के नाम पे और नमो ब्राह्मण देवाय, भगवान तो ब्राह्मणों का बड़ा ध्यान रखते हैं, ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, ऐसा करते जब बहुत सारे शिष्य बनते तो शिष्यों के माध्यम से फिर सामान आता रहता है, दक्षिणा मिलती रहती है। लेकिन अच्छे भी तपस्वी प्रकृति के ब्राह्मण भी होते हैं, बड़े संतोषी स्वभाव के भी होते हैं, वो भी द्रव्य में आशा नहीं करते, हरि भजन में आशा करते हैं। लेकिन ये लोग अभी इकट्ठे होकर राजा के पास फिर गए, कहते इसको गुरु पद धारण करने का तो कोई अधिकार नहीं, चलो सेवा पूजा की थी तब तक ठीक है, लेकिन गुरु बनने का तो इसको कोई अधिकार नहीं है, ये दीक्षा कैसे दे सकते हैं। फिर मीटिंग कराई गई, फिर रैदास जी को बुलाया गया, फिर सब लोग इकट्ठे हुए, तो राजा कहता आप क्या चाहते हो, क्या परीक्षा की जाए। कहते पिछली बार इनके भगवान थे, हो सकता है इनके भगवान के प्रति इनका कोई बस चलता हो या कोई जादू टोना लगाते हो, इस बार हम हमारे मंदिर से हमारे भगवान ले आएंगे और उन भगवान को यहाँ बिठाएंगे, और फिर अगर वो बुला ले तो हम मानते हैं, हम प्रयास करेंगे और वो भी प्रयास करेंगे, देखते हैं कि कौन बुलाता है। अब तो इन्होंने फिर वापस भगवान बिठा दिए, पहला नंबर ब्राह्मणों का लगाया, और ब्राह्मण ने तो यही दुहाई दी कि प्रभु आप तो ब्राह्मण के रक्षक है, नमो ब्राह्मण देवा, आप तो ब्राह्मणों की पूजा तक भी करते हैं, ब्राह्मणों के मुख से आप तो भोजन भी स्वीकार करते हैं, और ब्राह्मण तो आपके मस्तक के समान है, चतुर्वर्ण में सबसे उच्च माने जाते हैं, तो आप तो ब्राह्मणों की लाज रखोगे रखोगे। और उनको ये भी था कि इस प्रभु की सेवा तो हम रोज करते हैं। बड़ा कुछ बोला, थक गए, लेकिन भगवान तो वहीं पर बैठे। अब रैदास जी की बारी आई तो रैदास जी ने पुनः भगवान से प्रीतिपूर्ण व्यवहार किया, भगवान के चरणों में प्रार्थना की। अभी इस बार क्या हुआ, आसन समेत ही भगवान आ गए उनके पास में, सब लोगों ने देखा, राजा ने भी देखा, ब्राह्मणों ने भी देखा, आसन समेत प्रभु वहां पर आ गए। अब ये तो उनके अपने निजी भगवान तो थे नहीं कोई, ब्राह्मणों का ऐसा मानना था ना कि ये विग्रह की सेवा तो हम करते हैं, मतलब हमारे निजी प्रभु है, इनके पास चले गए फिर भी। तब रैदास जी को एक मत से स्वीकार किया गया कि रैदास जी गुरु बनने के भी योग्य है, रैदास जी में पूर्ण लक्षण है गुरु पद धारण करने के। इसलिए वैष्णव की जाति को देखकर सिर्फ ऐसा अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए के हीन जाति के वैष्णव है तो उनसे दीक्षा ना ली जाए। वाल्मीकि जी भी कोई बहुत बड़ी ऊंची जाति के नहीं थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किए थे। प्रभु भक्ति जब होती है तो शरीर धर्म वर्णाश्रम धर्म सब निकल जाता है और जी उससे ऊपर आत्मधर्म में स्थित हो जाता है, और आत्मधर्म भी की फिर कोई जाति नहीं होती है। तो रैदास जी की भी वास्तव में ऐसी कोई जाति नहीं थी, लेकिन जगह जगह पर मौका लगता था तो लोग उनसे विरोध करते थे। चित्तौर की रानी जो जाली थी, उन्होंने रैदास जी को एक दिन पत्र लिखा, गुरुजी हमारी बड़ी अभिलाषा है कि आप हमारे एक बार चित्तौर में आइए, हम आपकी खूब सेवा करें, हमारा मन करता है ऐसा, आपको खूब भोग अर्पण करें। बार बार अनुनय विनय जब किया ना, तो रैदास जी ने उनकी बात को मान्य कर लिया, चलो ठीक है अगर आप कहते हैं तो हम आएंगे। रैदास जी वहां पर गए, अब रानी के गुरु आए हैं, सब लोग सम्मान तो दे रहे, अब भोजन का निमंत्रण कराया गया, सभी ब्राह्मणों को भी बुलाया, अब रैदास जी को भी भोजन कराना है वहां पर। जब ब्राह्मण आए बैठे और रैदास जी आए तो ब्राह्मण कहते हम नहीं भोजन करेंगे, ये तो चमार है। अब रैदास जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इनको भोजन करने दो। ब्राह्मणों को सब परोसा गया, वो भोजन करने के लिए बैठ गए। पहले तो रैदास जी ने सोचा कि ब्राह्मण भोजन करते हो तो उनको सुखपूर्वक भोजन करने देना चाहिए, प्रसाद लेने देना चाहिए। जब पूरा प्रसाद होने को आ गया, जब महापुराण का समय आ गया, बस आचमन करना बाकी रह गया, हर दो ब्राह्मण के बीच में भी रैदास जी दिखाई दे रहे, सभी को, उन ब्राह्मणों को भी दिखाई दे रहे और बाकी सबको भी दिखाई दे रहे। हर दो ब्राह्मण के बीच में एक रैदास जी, ब्राह्मण सब चिल्लाने लगे, ये हमारे बीच में कहां से आ गए, और बाकी सबको भी दिखाई दे रहे। अब ब्राह्मण ने बबाल मचाया, रैदास जी कहते शांति रखिए, हम ब्राह्मण नहीं, आपका यह मानना है क्या, हम चमार है इसलिए आप ऐसा व्यवहार करते हैं क्या। तो रैदास जी ने अपने शरीर के ऊपर से चमड़ी काटी और चमड़ी, पतली चमड़ी के भीतर में सोने की जनोई बाहर निकाली। आप लोग तो कहते सूत्र की जनोई पहनते हैं ऊपर से, रैदास जी ने शरीर के भीतर में से सोने की जनोई बाहर निकाली। बोलो अब मानते हो कि नहीं हमको ब्राह्मण, आप अब कौन मना करेगा मानने से। सब ने स्वीकार किया कि आप बड़े महान हैं, आपको मानते हैं, आपका मान रखते हैं हम। तो ऐसे महान थे रैदास जी, लेकिन फिर भी विनम्रता में रहते थे हमेशा। आवश्यकता पड़ती थी तो बस मात्र लोगों को शिक्षा देने के लिए कार्य करते थे, मान सम्मान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। काशी नरेश कबीरदास जी के शिष्य थे और कबीरदास जी और रैदास जी गुरु भाई थे, तो रैदास जी में भी श्रद्धा करते थे। कभी कभी आते जाते रैदास जी को भी प्रणाम कर दिया करते थे। एक दिन रैदास जी अपनी मानसी सेवा में बैठे हुए हैं, भगवान की सेवा कर रहे, भगवान को अभिषेक कराया वगैरह, और भगवान को प्रणाम कर रहे थे, उतने में राजा आ गया। वो तो अपना भगवान को प्रणाम कर उसी भाव से प्रणाम किया, सामने राजा आ गया, और भाव में थे तो अपनी कठौती थी उसमें से गंगा जो जो कठौती में जो चमड़ा भिगोते ना जिस पानी में, वो जल लिया, भाव भाव में बोला लो महाराज चरणामृत पियो। अब राजा ने हाथ में पकड़ लिया। अब राजा कहते ये क्या कर रहे है, मेरा ऐसा अपमान कर रहे हैं, जहां चमड़ा भिगोते उसमें से निकाल के ऐसा हाथ में पानी दे दिया और बोलते लो चरणामृत पियो। अब राजा हाथ में पकड़ के रखा, पीने का मन नहीं कर रहा है, कैसे पिए कहते। तो राजा ने क्या किया, पीने का बहाना करके ऐसे हाथ करके वो बाजू में गिरा दिया, जो पोशाक पहना था राजसी उसमें गिरा दिया, और बड़ा दुखी मन से चले गए वहां से। कहते रैदास जी ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, संतों की करनी पहले समझ में नहीं आती ना तो व्यक्ति झुंझलाता है, कभी कभी गुरु के ऊपर भी बोलता है, महाराज ने लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं किया, महाराज जी को मेरा ही पक्ष लेना चाहिए था, गुरु जी को हमारा पक्ष लेना चाहिए था, दूसरे वाले को डांटना चाहिए था, न्याय नहीं किया। अरे गुरु के प्रति ऐसा भाव, तो कई बार गुरु की करनी और कहनी समझ में नहीं आती तो शिष्य कभी कभी हृदय में रूठता रहता है कि ठीक नहीं किया इन्होंने। तो राजा अंदर से दुखी है, कहते रैदास जी ने हमारा एक तरीके से अपमान ही कर दिया। अब क्या हुआ, जब महल में पहुंचे तो वो जो उन्होंने वस्त्र पहना था ना, वो वस्त्र पे लाल लाल दाग लग गए। उनके ध्यान में बात आई नहीं पहले, उन्होंने धोबी को धोने के लिए दे दिया। अब धोबी ले जाके उसको धो रहा है, बड़ा घिस घिस के धो रहा है, वो दाग निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो धोबी ऐसे मुंह लगा के घिस रहा है, तो चरणामृत का मुंह से स्पर्श लग गया, और दाग से दाग लगा था उसका स्पर्श लग गया, तो धोबी को स्पर्श लग गया तो धोबी भावुक हो गया। जब धोबी भावुक हो गया ना तो धोबी की आंखों में से आंसू आने लगे, धोबी तो बड़ी प्रेमपूर्ण बातें करने लगा। फिर राजा के पास लाया गया कि धोबी को कुछ हो गया, आपका ये वस्त्र धोता था ना, तो आपका वस्त्र धोते धोते धोबी भावुक हो गया। अब राजा कहते हैं हमारे वस्त्र में ऐसा क्या था, तो पता चला वो दाग लगा था, तब उसके स्मरण में आया के पानी का तो दाग नहीं लगा, ये तो चरणामृत का दाग लगा था, उन्होंने चरणामृत ही दिया था हमको, और पता चला कि धोबी की अवस्था हो गई। अब भागे रैदास जी के पास, महात्मा जी बड़ी गलती हो गई, लाइए चरणामृत दीजिए पी लेंगे। कहते उस समय तो प्रभु का अभिषेक हुआ था, वो तो चरणामृत था, अब तो नहीं है कुछ अभी, हाँ वो तो था और चला भी गया। राजा बड़ा पछताया कि कृपा उस समय मिली थी, है, लेकिन मैंने कृपा को लिया नहीं, अब पछता रहा है, कि मैंने भी शायद वो पी लिया होता तो शायद मेरी क्या अवस्था हो गई होती वो। तो रैदास जी की ऐसी बड़ी लीलाएं थी। गोरखनाथ जी एक चमत्कारी योगी माने जाते थे। काशी में जब आए थे यात्रा करते तो गोरखनाथ जी रैदास जी के पास भी गए थे। गोरखनाथ जी भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वैष्णव भक्तों में उनका नाम नहीं आता है। रैदास जी के पास गए, उन्होंने कहा बड़ी प्यास लगी है, पानी पिलाएंगे। पानी पीने का जो पात्र था उसको खप्पर कहते हैं, उन्होंने खप्पर को भरा उसी कठौती के जल में से और पकड़ा दिया, लो पियो। अब चमड़ा भिगोया है उसमें से पानी भर के दे दिया। अब गोरखनाथ जी को बड़ा कष्ट लगा, ये तो ठीक नहीं किया इन्होंने, ये क्या कर दिया इन्होंने, कोई ऐसा व्यवहार करता है किसी के साथ। और रैदास जी के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि इनको कुछ सबक सिखाओ, वो तो भाव भाव में उनको तो वो पानी कोई ऐसा आम नहीं लग रहा था, उनको वो भी पानी दिव्य ही लग रहा था, तो दे दिया उन्होंने। अब क्या हुआ, वहां से वो कबीर जी के पास गए और कबीर जी के पास जाके कहते, हम गए थे रैदास जी के पास और हमने उनसे पानी मांगा, उन्होंने देखो हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, वो खप्पर कठोटी के जल में से भर के दे दिया, कोई ऐसा करता है। तो कबीरदास जी तो समझ गए कि ये आउट ऑफ ट्रैक जा रहे थोड़ा। लेकिन कबीरदास जी की जो बेटी थी कमाली, कमाली ने कहा क्या हुआ, कहते ऐसा ये घटना बता दी। कमाली ने खप्पर लिया और पी गई, पानी को पी गई, उसके कारण कमाली के अंदर बड़ी दिव्य भक्ति जागृत हो गई। जो गोरखनाथ जी को मिलने वाली थी वो रह गए, लेकिन अब वो कमाली को मिल गई। देव संयोग से समय के रहते कमाली का विवाह हो गया और विवाह करके वो मुल्तान में चली गई। और गोरखनाथ जी ऐसे प्रकृति के थे, वो जगह जगह भ्रमण किया करते थे, तो कई लंबे अंतराल के बाद गोरखनाथ जी भ्रमण करते करते मुल्तान पहुंचे थे। और गोरखनाथ जी के पास एक पात्र था, उसी के पास भिक्षा लेते थे जो पात्र को भर दे। प्राय कोई भरता नहीं था, इससे गोरखनाथ जी की ख्याति फैलती रहती थी, सब जगह जाते थे तो कोई पात्र भर नहीं पाता था, जितना भी उसमें डालो फिर भी पात्र खाली रहता था। मुल्तान में पहुंचे, अनेक लोगों ने प्रयास किया, पात्र नहीं भरा। कमाली को पता चला कि गोरखनाथ जी आए, उनका सम्मान भी करती थी, उन्होंने अपने पति से कहा कि आप उनको घर पे बुलाइए। कहते उनको क्या बुलाएंगे, उनका पात्र कैसे भरेंगे हम, वो तो राजा लोग उनका पात्र नहीं भर सकते, हम कैसे उनका पात्र भरेंगे। कहते नहीं आप बुलाइए, बुलाए, पर्दा किया, पर्दे के पीछे से एक प्रसाद की पूरी थाली तैयार करके पर्दे के पीछे से ऐसे कमाली ने आगे कर दी। गोरखनाथ जी बैठे और पात्र लेकर, कहते हमारा पात्र भरिए तो हम इसको ग्रहण करेंगे। कमाली ने उसमें से एक चम्मच चावल लिए और डाल दिए पात्र में, जो पात्र में चावल डाले पात्र पूरा भर गया। अब गोरखनाथ जी को लगा ये साम्य साधारण कोई नहीं हो सकता, कोई हमारा पात्र भर नहीं सकता, इन्होंने कैसे भर दिया। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो और ये पात्र तुमने कैसे भरा। कहते बाबा मुझे पहचाना नहीं, मैं बेटी कमाली हूँ, कबीरदास जी की बेटी। अच्छा बेटी तुम यहाँ पर हो, हाँ मेरा ब्याह हुआ यहाँ पर, मैं यहाँ हूँ, तो तुमने पात्र कैसे भर दिया। कहते उसी खप्पर के प्रताप से। कहते कौन सा खप्पर, कहते जो रैदास जी ने आपको दिया था और आपने नहीं पिया था लेकिन मेरे को पीने को मिल गया था, उसी खप्पर के प्रभाव से मैंने पात्र भरा है। अब गोरखनाथ जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि रैदास जी की इतनी बड़ी कृपा से हम वंचित हो गए। लेकिन संत दया करके कभी करुणा उस समय कर देते, बाद में जाके भी माथा पच्ची करो, बाद में कुछ नहीं होता, उस समय समय का परिस्थिति होता है, संतों की दया होती है, उस समय ले ले तो ले ले। जैसे एक संत ने अपने मित्र को कहा चलो के प्रभु के घर, कहते अभी कहाँ प्रभु के घर, काम देखते हो कितने। कहते नहीं आपने कहा था ना कि कभी प्रभु के घर जाओ तो हमको भी ले जाना, इसलिए आपको पूछ रहे हैं, चलो के प्रभु के घर। जलाराम बापा पूछते और वो रामायण पढ़ने वाले संत कहते अभी नहीं बाद में, हमने आपसे कहा था लेकिन आप सच में जब जाओगे तब ले जाना। अभी तो हमको ये रामायण का पाठ करके किसी गांव से आ रहे हैं, अभी और भी काम है। कहते हैं ठीक है आपकी जैसी इच्छा। संत जब वीरपुर गांव में गए तो पता चला कि बापा तो धाम चले गए। कहते कब गए? बस थोड़े समय पहले ही। उसको समझ में आ गया कि बापा तो मुझे लेने आए थे कि मैं प्रभु के घर जा रहा हूँ, चलोगे क्या? तुमने कहा था ना कि जब कभी जाओगे तो हमको भी ले जाना, छोड़ना मत। मजाक मजाक में कभी कहते हैं ना एक दूसरे को भक्त कि हमने तो इनकी धोती पकड़ के चले जाना है, इनके पैर पकड़ के चले जाना है, हमारे से तो भजन होगा नहीं, गुरु का पीछे से डंडा पकड़ लेंगे, ऐसा मजाक करते रहते हैं ना लोग कभी कभी। तो जलाराम बापा जी ने सही में मान लिया। अब क्या हुआ, वो आया ही नहीं। बापा चले गए, पछता रहा, अरे अरे मैं चला गया तो अच्छा था, वो लेने आए थे। अब कुछ नहीं हो सकता, वो गई बात। तुकाराम जी भी अपनी धर्मपत्नी को बोल रहे थे, चलेगी क्या भगवत धाम? कहते हमको कोई काम नहीं, आप तो वेले बैठे इधर उधर दिन भर घूमते रहते तंबूरा लेके, मेरे को तो भैंस नहलानी, भैंस को खिलाना, कितने काम है। तुकाराम जी ठीक है तेरी इच्छा। वो मंगलाई नाम था उसका, मंगलाई की खूब सेवा करती, वो मायके से लेके आई थी भैंस, दूध नहीं देती थी वो लेकिन खूब सेवा करती थी उसकी, मायके की चीज थी ना, और भैंस की सेवा करती रही। तुकाराम जी आंगन में आए, गरुड़ जी आए, तुकाराम जी बैठे और गरुड़ जी लेके चले गए तुकाराम जी को। जब पूरा गांव हल्ला गुल करने लगा तब आई बाहर, क्या हुआ? कहते आपके पति तो चले गए भगवत धाम, गरुड़ जी लेने आए थे, अब माथा पीट रही है, अब दोबारा से गरुड़ जी नहीं आने वाले वापिस, हो गया काम। तो कभी कभी भक्तों के ऐसे आशीर्वाद होते, मौके पे हो गया तो हो गया, बाद में कहीं नहीं दोबारा कर ले तो दोबारा कुछ नहीं, हो गया सो हो गया, समय समय की बात है। अब गोरखनाथ जी पछता रहे कि हमने उस समय पी लिया होता तो, लेकिन पीने के लिए उतनी बुद्धि भी चाहिए थी ना पर्याप्त, संतों में सामान्य बुद्धि की, संतों में सामान्य बुद्धि नहीं करनी थी, लेकिन प्रायः हमारे में हो जाती है ऐसी, लेकिन करते नहीं। रूप गोस्वामी को तो कहते हैं किसी संत को अगर कोई कुष्ठ रोग हुआ, शरीर गल रहा हो, हाँ जैसे कि कभी कभी गंगा के अंदर भी फेन दिखाई देता है ना, और गंगा के किनारे के ऊपर भी कचरा दिखाई देता है कभी कभी, ये देख के व्यक्ति को ये नहीं सोचना जी ये गंगा तो बड़ी गंदी है इसमें कैसे स्नान करेंगे, फिर भी कहते जाके स्नान करो। कभी संतों के शरीर में कभी कभी कोई कुष्ठ रोग भी दिखाई देता है, पस निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी कभी उनमें दोष बुद्धि नहीं करते, वो शरीर का धर्म है, भक्ति आत्मा का धर्म है, इसलिए आत्मा की दृष्टि से तो वो संत अभी भी है। तो इस तरीके से संतों को पहचानना भगवान को पहचानने से भी ज्यादा कठिन है। संतों की दया प्राप्त करने के लिए व्यक्ति वास्तव में संत हृदय जैसा बन जाए ना तब समझ पाता है, अन्यथा नहीं समझ पाता। जैसे हम हाथ देखते रहे आधा घंटा तो भी हमको कुछ नहीं समझेगा, लेकिन एक ज्योतिषी हाथ देख के तुरंत बता देता है कि क्या है हाथ में। हम अगर कुछ टुकड़ा देखते रहे तो हम नहीं बता सकते एक घंटे तक भी उसका मूल्य कितना है, लेकिन जौहरी देख के बता देता है कि इसका मूल्य कितना है। हमारा देखना और उसका देखने में फर्क है। इसी प्रकार संत एक संत को देखता है, उसका देखना और हमारा संतों का देखना उसमें भी फर्क है। हम संत को हमारा जैसा ही मान के देखते हैं और अच्छा संत संत को वैसा मान के देखता है, इसलिए वो पहचान जाता है कि ये महान है, सामान्य नहीं है। और हम सामान्य होते इसलिए हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक कितना होगा, हमारे जैसा ही होगा। कुएं का मेढक अधिक से अधिक बुद्धि लगाएगा तो कितने लगाएगा, दो चार कुएं की लगाएगा, उसे ज्यादा क्या लगाएगा। इसलिए हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते संतों को, लेकिन समझना हो तो बस बार बार उनकी सेवा में लगे रहे तो समझ में आता है। राजा की तरफ से एक ब्राह्मण गंगा की पूजा करने के लिए रोज जाते थे और गंगा को फूल अर्पण करते थे, पूजा विधि करते थे। राजा रोज नहीं जाता था तो ब्राह्मण को नियुक्त किया था उन्होंने कि तुमने रोज जाके करने का, ये ठीक है। तो जिस रास्ते से जाता था उसी रास्ते पे रैदास जी बैठते थे, वो जाते कभी कभी रैदास जी को बोलता था चलो गंगा स्नान करने के लिए चलोगे, रैदास जी कहते भाई कहाँ टाइम है, मतलब कि वो जूते बना रहे, कहते कहाँ टाइम है, सामान्य व्यक्ति को क्या लगे, देखो गंगा स्नान करने जाने नहीं जूते बनाने लगे, संसार की माया में अटक गए हैं, बिजनेस में अटके हुए। लेकिन रैदास जी का तो भाव ही कुछ और था। ब्राह्मण बार बार जाते जाते बोलते कि आज चलोगे क्या, किसी विशेष दिन पे आग्रह करते, आज तो बड़ा विशेष त्यौहार है, संक्रांत है, आज चलोगे क्या? रैदास जी कहते भाई हम आज नहीं चलेंगे, लेकिन तुम राजा की तरफ से रोज फूल अर्पण करते हो ना, एक काम करो ना, ये मेरे 2 रुपये भी गंगा माता को अर्पण कर देना ना जरा, जब तुम जा ही रहे हो तो। कहते ठीक है कर देंगे, अगर आपका भाग्य नहीं है गंगा तक आने का तो हम कर देंगे। वो ब्राह्मण गया, गंगा जी की पूजा की और क्या किया, जब गंगा माता को बोला कि रैदास जी ने आपके लिए कुछ भेंट दी है, गंगा माता ने हाथ निकाला और भेंट ले ली। वो ब्राह्मण चकित हो गया, इतने दिन से मैं फूल चढ़ाने आता हूँ, कभी तो फूल लिए नहीं, इनकी भेंट ले ली। उतने में वापिस गंगा माता का हाथ आया ऐसा, और सुंदर सा कंगन हाथ में रखा हुआ है, और रैदास को दे देना कहते। इन्होंने कंगन देखा, बनावट देखी, सोना देखा, ये तो ये इस जगत का नहीं लग रहा है, तो अद्भुत है। अब ब्राह्मण ने कंगन प्राप्त किया, ब्राह्मण अभी लोभ, अंदर से लोभ जाग गया ब्राह्मण को। कहते रैदास जी को तो पता ही ना, पता नहीं ना कि गंगा जी ने कंगन दिया, अब मैं अपने घर ले जाऊं तो उनको क्या समझ में आएगा। वो चले अपने घर के लिए, जहां जाए ना वहां सामने रैदास जी अपना काम करते दिखाई पड़े, फिर दूसरे रास्ते से जाए तो वहां भी रैदास जी सामने काम करते दिखाई पड़े, बार बार रास्ता बदले लेकिन बार बार सामने वही दिखाई पड़े। उसने सोचा कि भगवान चाहते मैं इसको रैदास जी को ही दे दूं। आए रैदास जी के पास, सारी घटना बताई और कंगन दे दिया। रैदास जी को लगा भाई कंगन में बड़ी इसकी इच्छा थी, चल कोई नहीं, रैदास जी ने बड़ा मन रखे कंगन वापस कर दे, ले भाई ले जा, तू ले जा। बड़ा खुश हो गया, हाँ हाँ रैदास जी ने कंगन दे दिया मुझे। अब क्या किया, उस कंगन को जौहरी को बेच दिया, जौहरी ने बड़ा मूल्य दिया उसको, जौहरी ने कंगन वो किसी सेठ को बेच दिया। जौहरी ने सोचा ये सेठ बड़ा एंटिक चीजों को रखने वाला है, अद्भुत चीज देके खूब पैसा देगा, सेठ को दिया, सेठ ने दिया भी खूब पैसा, और सेठ की राजा के साथ मित्रता थी। सेठ ने अपनी धर्म पत्नी को दिया पहनने के लिए, धर्म पत्नी पहनी, दोनों राजा के पास गए थे एक दिन मिलने के लिए, तो रानी जो थी ना उसकी नजर बार बार वो सेठ जी की पत्नी के हाथ पे लगी रहे। माताओं को आदत होती है ना, भाइयों को कम होती है, माताओं को, उनको सब पता होता है किसने कल कौन सी साड़ी पहनी थी, क्या था पिछले वाले जन्माष्टमी में, क्या पहना था, सब पता होता है उनको, उनका स्वभाव होता है ऐसा। हमको तो सुबह कोई भक्त मिला था, अभी पूछो बताओ कैसा पहना था, तो कहना कठिन है कि क्या पहना था, उनको ध्यान रहता है। वो एक कपड़ा दूसरी बार एक ही प्रोग्राम में पहनते भी अचकाते हैं, वो पता चल जाएगा, बोलेगा एक ही कपड़ा बार बार यही पहन के आते, सबको पता है चल जाएगा कहते। तो वो रानी बार बार वही नजर अटकाए, सेठ जी को लगा कि रानी की नजर बार बार यहां है। सेठ जी ने अपनी घरवाली को कहा कंगन दो जरा, उसने राजा के हाथ में दे दिया, ये लीजिए आप हमारे मित्र है, हमारी तरफ से उपहार समझिए। राजा ने कंगन देखा, राजा ने रानी को दे दिया, रानी बड़ी खुश हो गई, यही चाहिए था मुझे। अब कुछ दिन कंगन पहना, बड़ा आनंद आया, राजा को कहते ऐसा एक दूसरा बनवा दो, ऐसा का ऐसा। राजा ने बुलाए बहुत सारे जौहरी, ये कंगन दिखाया और ऐसा का ऐसा दूसरा बना दे। अब जिस स्टाइल में वो बना था ना, जौहरी कहते ये घाट हमको बनाना नहीं आता। राजा कहते नहीं कुछ भी करो बनाओ, जितना पैसा चाहिए। कहते महाराज जितना क्या, जो भी हम बुद्धि लगा दे, जो भी कुछ करेंगे नहीं बना सकते, ये तो यहाँ का नहीं लग रहा है, ये कहीं देवलोक से आया लगता है, यहाँ का नहीं है। राजा कहता है आप जौहरियों के कंगन नहीं बना सकते? जौहरियों ने कहा महाराज हम क्या कोई कारीगर नहीं बना सकता, ये सामान्य कंगन नहीं है। सेठ जी को पूछा आपने कहाँ बनवाया था? कहते हमने बनवाया नहीं, हमने तो खरीदा था। तो कहते किससे? कहते एक जौहरी से खरीदा था, तो उसने तो बनाया होगा, पूछो उसको। उसको पूछा, कहते हमने भी बनाया नहीं है, हमने तो एक ब्राह्मण से खरीदा था, वो हमारे यहाँ बेचने आया था, ब्राह्मण को बुलाया तो वही ब्राह्मण निकला जो राजा की तरफ से फूल चढ़ाता था रोज। राजा ने बोला ब्राह्मण जी ये कंगन कहाँ से लाए थे, ऐसा दूसरा ला के दीजिए, आप जो पैसा मांगोगे मिल जाएगा। ब्राह्मण कहते महाराज ये कंगन तो हमको रैदास जी ने दिया था। रैदास जी के पास गए, रैदास जी कहते महाराज ये तो कंगन हमारा नहीं, गंगा मैया का है। कहते आप गंगा मैया को बोलो ना कंगन देने के लिए। कहते वो तो गंगा मैया की अपनी खुद की इच्छा थी, गंगा मैया ने दे दिया, आ गया सो आ गया, दिन गई बात गई।
अब रानी जिद कर रही है, नहीं 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 मुझे कंगन कैसे भी चाहिए, मुझे कंगन कैसे भी चाहिए। राजा हाथ जोड़ रहा है, अभी कृपा करके दिला दो ना कंगन, हमारा जीना हराम हो जाएगा। रैदास जी कहते अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ, रैदास जी के कठौती के नीचे से बड़ी तीव्र वेग में गंगा बह रही है। रैदास जी ने प्रार्थना की और हाथ डाला और एक कंगन निकाल के दे दिया। राजा कहते इतनी जीवा थी इनके लिए, दे नहीं रहे थे। कहते कैसे दे दिया, कहते गंगा माता से मांग के दिया। कहते गंगा कहें, कहते देखो बह रही है यहां से, देखा तो गंगा बड़ी तीव्र गति से कठौती के नीचे से बह जा रही है। राजा पड़ा चरणों में, कहते कंगन की क्या महत्वता, ऐसे संत हाथ निकाल के कंगन दे दे, संतों की महत्वता है। चरणों में पड़ गया, वो ब्राह्मण ज्यादा भावुक हो गया रैदास जी के प्रति। कहते बड़े महान संत है, वास्तव में सामान्य व्यक्ति नहीं है, मैं इनको गंगा स्नान कराने ले जाता था, गंगा यहां से चलती है। ब्राह्मण को समझ में आ गई बात। कहते महाराज आपकी ये भक्ति के पीछे का कारण क्या है। कहते मैं कोई बड़ा भगत भगत नहीं हूं भाई, ये तो हमारी जो घरवाली है ना वो भक्त है, वो सती गुण की संपन्नता रखती है, उसमें सारे दिव्य गुण है, उसी के कारण हमारे में आ जाते हैं। कहते नहीं नहीं ये बात हम तो नहीं मानते। कहते सच कह रहे भाई। कहते हमको दिखाओ जरा, अच्छा देखना है हमारी धर्म पत्नी कैसी है। कहते एक काम करो, हमारे घर जाओ और धर्म पत्नी को बोलना कि एक बड़ा सा घी का घड़ा जो लाए थे ना साधुओं के भोज भंडारे के लिए, वो घी का घड़ा आंगन में जाके फोड़ दो। ब्राह्मण गया, जाके रैदास जी की पत्नी को समाचार दिया कि रैदास जी ने ऐसा ऐसा कहा है। उसने कोई विचार नहीं किया, मटका जो था घड़े का उठाया और ले जाके आंगन में फोड़ दिया। वो बड़ा आश्चर्य कर गए, कोई किंतु परंतु कुछ नहीं, सीधा मटका फोड़ दिया, इतनी महानता, वाकई में इनकी धर्मपत्नी महान है। ब्राह्मण घर गए, कहते मेरी धर्मपत्नी कैसी है जरा देखते हैं। एक शेर घी था बर्तन में। ब्राह्मण ने कहा सुनती हो, वो एक शेर घी जो हम लाए थे ना हमारे काम के लिए, उसके भी आवश्यकता नहीं है, आगे जाके आंगन में डाल लिया हो। तो ब्राह्मणी कहती है भांग पीकर आए हो क्या। कहते भांग नहीं पिए। तो क्या धतूरा खाकर आए हो। कहते धतूरा भी नहीं खाए। तो क्या कहीं पागल खाने से आए हो, पागल हो गए हो क्या। कहते मैं तेरे को कहता हूं तो डाल के आ जा, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। कहते दिमाग खराब हो गया, आपका तो दिमाग नहीं है, घी डाल के आ जाओ, सड़क पे घी डालने से क्या लाभ होगा, पागल हो गए कहीं के, दफा हो जाओ यहां से। अब ब्राह्मण को समझ में आ गया, एक शेर घी मेरे कहने पर नहीं डालती, इतनी वैल्यू मेरी घर में। उन्होंने हाथ जोड़े उसको और आगे रैदास जी के पास, महाराज अब जब तक जिएंगे आपके पास रहेंगे, भजन करेंगे, अब सब 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 संसार देख लिया, सब समझ में आ गया। वास्तव में रैदास जी को उनको भक्ति मार्ग में लगाना था, इसलिए उन्होंने पहले उनके घरवाली के पास भेजा चमत्कार दिखाने के लिए, ताकि संसार में समझ में आ जाए कि हम संसार में जो मानकर बैठते हैं ना वो वैसे नहीं है संबंध। जब तक संसार की गाड़ी चलती है तब सब ठीक लगता है, परीक्षा की घड़ी पे सब ज्ञात हो जाता है कि किसका कितना स्वार्थ रहता है जगत में। हम ये नहीं कह सकते हमारे संबंधी स्वार्थी है, उनके लिए हम भी स्वार्थी है। जो शुद्ध भक्त नहीं होता वो स्वार्थी ही होता है। और जगत में एक शुद्ध वैष्णव ही ऐसे होते हैं और भगवान ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के जीवों के लिए काम करते हैं। जैसे प्रभुपाद ने संसार में इतने जीवों को तारा, क्या स्वार्थ, सिर्फ एक ही इच्छा थी कि बस जीव सुखी हो जाए, प्रभु घर जाए। और ऐसा एक महान संत कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कहते माँ बाप भी नहीं कर सकते, माँ बाप तो भक्ति में जाने वाले व्यक्ति को कस के वापस ले आते हैं, बांध के रखते हैं। भगवत धाम नहीं जा सकता तू, हमारा क्या होगा, तू मेरी सेवा करते हुए नरक चला जाएगा तो मंजूर है, भगवत धाम जाएगा वो मंजूर नहीं। तात्पर्य कहने का है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते। रैदास जी का चरित्र अलग था। रैदास जी के संपर्क में जो आते थे उनकी कृपा से वो भी भक्त बन जाते थे। तो ऐसे महान वैष्णव जो जन्मे तो चमार जाति में थे, लेकिन चमार का एक लेश मात्र भी अंश उनमें नहीं था, और वही रविदास जी ने कृपा करके मीरा जी को भी शिक्षा दी थी, और मीरा को, मीरा ने अपने भजनों में लिखा है रविदास जी को गुरु स्वीकार किया है मीरा जी ने। तो ऐसे महान वैष्णव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और बस एक ही आशा लगाते, दूसरी नहीं, कि वो हमको शुद्ध भक्ति का दान दे। वैष्णव की कृपा से सरलता से मिल सकता है। तो रविदास जी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय।